क्या किया, साइंस सिखा रहे थे, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि अच्छा साइंसदान वो होता है कि जो उसको करने को कहा जाए वो करता है, ठीक है, किसी चीज़ में मतलब झिझक नहीं महसूस करता या कराहत नहीं लेता। फिर उसके बाद उसने एक कीचड़ वाला पानी मंगाया जार में और उसमें उंगली डिप की और अपने मुंह में डाल ली, तो कहा कि अब मैं तुम सबको कहता हूँ कि तुम ये भी कर, तुम भी ये करो, क्योंकि बाद दफ़ा साइंटिस्ट को केमिकल से खेलना पड़ता है, कुछ होता है। तो उसने ये किया तो लड़कों ने भी ये कर लिया। तो उसके बाद उसने कहा कि तुम लोगों ने मेरी पहली बात तो मान ली कि जो मैंने कहा वही किया, लेकिन तुम लोगों ने गौर नहीं किया कि मैंने उंगली कीचड़ में एक डिप की थी और मुंह में मैंने दूसरी डाली थी, ठीक है। तो अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको अपने आप को बिल्कुल किस तरह लेना पड़ता है, कान और आंखें खोल के शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाऊसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु कौली। सबक नंबर 5, आयत नंबर 30 से लेकर 39, 30 to 39, लेसन नंबर 5 है सूरत अल बकरा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. یہاں سے شروع ہو کر ہمارا سبق جو ہے ہم فیخا خالدون پہ، اس سے پہلے کہ ہم آیتوں پہ چلیں براہ راست، کچھ باتیں مرکزی خیال. ہر سبق کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، تھیم ہوتا ہے جس کو انگلش میں آپ کہیں گے. اگر ہم کسی بھی سبق کا تھیم سمجھ گئے، لکھئے، अगर हम किसी भी सबक का थीम समझ गए तो हमें उस सबक में से बहुत कुछ लेना आसान हो जाएगा. और साथ ही साथ हर जहन में कुछ ना कुछ सवालात उभरते हैं, और उन सवालात पे नज़र रखना, उनका जवाब पा लेना इंसान को बहुत मुतमईन करता है. तो चीज़ें चंद नोट करेंगे कि इस सबक का बुनियादी थीम क्या है और ये पारा, ये लेसन हमारे किन सवालात का जवाब देगा. सबसे पहले, क्या इंसान बंदरों की औलाद है? इस सवाल का जवाब हमें अपने आज के इस सबक से मिलेगा. फिर दूसरी चीज़, इस सबक में हमें दुनियावी इल्म यानी एक्वायर्ड नॉलेज, जो कि हमारे बच्चे स्कूलों कॉलेजों में जाके लेते हैं, इसका और रेवलेशन का इल्म यानी इल्मुल वही का फ़र्क दिखेगा. और हम इसकी रोशनी में बात करेंगे कि क्या दुनिया में दुनिया का इल्म नहीं लेना चाहिए और सिर्फ एक इंसान अपने आप को दीन के इल्म के साथ रखे, या इसका ऑपोजिट, दोनों चीज़ों का फ़र्क हम इसमें देखेंगे. तीसरा, इसमें हमें फ़र्क पता चलेगा तख्लीक इंसानी का असल मकसद क्या था, यानी क्रिएशन प्लान, व्हाट वाज अल्लाह क्रिएशन प्लान बिहाइंड यानी क्रिएटिंग आदम अलैहिस्सलाम और इंसान को. इस सबक में हमें एक और चीज़ भी पता चलेगी, और वो क्या है कि इंसान ने आदम अलैहिस्सलाम से विरसे में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या खूबियाँ पाईं. और इस सब से हमें एक और चीज़ समझ आएगी, और वो क्या है कि इंसान को दूसरी मखलूकात पे फोकियत क्यों दी गई. और एक और चीज़ इसमें हम देखेंगे, और वो है इम्तिहान. तीन इम्तिहानात का तذکرہ ہے اور تینوں کے ریزلٹس ہیں. تھوڑی سی بات کرتی ہوں پارے کے ساتھ پیچھے چلاتے ہوئے اس پارے، اس لیسن کے مرکزی خیال کی. ہم سب نے ہدایت کی دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، کہا ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، الحمدللہ ختم ہو گئی بات. کون ہوتے ہیں ہدایت والے؟ متقی لوگ، الذین یؤمنون سے لے کر اولئک هم المفلحون تک، بات اور واضح ہو گئی. کون بالکل انکاری ہیں؟ ان الذین کفروا سے عذاب و نظیم تک. کون بیچ کے ڈاواڈول ہے؟ جو سمجھتے تو ہیں کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہم نے دین بھی رکھا ہوا ہے، دنیا بھی رکھی ہے، لیکن قیامت کے دن ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. اس کو منافق کہتے ہیں. آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک ہم نے پڑھ لیا. 21 آیت سے لے کر آیت نمبر 29 تک ہم نے چوتھے گروہ کا تذکرہ پڑھ لیا، جس کو فاسق کہتے ہیں. یہاں پہ گویا کے چار ڈفرینٹ اینگلز اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے سامنے رکھ دیے کہ تم ہیومن ہو، تم انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو پہچانو، تو ان چار میں سے ایک کو پہچانو. اب ایک کویسچن ہے انسان کے ذہن میں، ہر بچے کے ذہن میں بھی آتا ہے. آپ لوگوں نے بھی اپنے بچپن میں اپنے ماں باپ سے کیے ہوں گے. آج کے بچے کو تو چونکہ ڈارونزم پڑھا دی گئی، تو اس کا سوال ذرا فرق انداز کا ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ انسان کے اندر یہ سوال ضرور ابھرتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، मेरा आगाज़ क्या था, मैं माजी में क्या था। आप देखिए कि अपने माजी का जिक्र सुनना बहुत अच्छा लगता है। कभी आपने अपनी फैमिलीज में बैठकर फैमिली की बातें की हैं, माजी के किस्से? कई दफ़ा हम बैठते हैं, हमें अपने ख़ानदान में बैठ के मज़ा क्यों आ रहा होता है? क्योंकि हम पिछले वो पोल खोल रहे होते हैं ना। इसी तरह हर इंसान ये चाहता है कि उसको ये भी पता हो कि आखिर उसकी असल क्या है। ये सवाल शुरू से जहनों में था, लेकिन एक शख्स जो प्रीस्ट था, रिलीजियस था और साइंटिस्ट भी था, डार्विन उसका नाम था, उसने अपने दौर में ये डिस्कवर किया, अपने जोम में, नियत बुरी नहीं थी, क्योंकि एक्सपीरियंसेस होते हैं, बाद में वो कभी प्रूव हो जाते हैं, कभी नहीं होते। उसने ये साबित करने की कोशिश की कि एवोल्यूशन, एवोल्यूशन क्या होता है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एक सेल, यूनिसेल, फिर मल्टी सेल, फिर होते होते और बड़े बड़े होते हुए इंसान। वो कहते हैं कि पहले दौर में बंदर था, फिर इवॉल्व हुआ, रेवोल्यूशन की सतह से गुजरते हुए फिर एक वक्त आया कि बंदर से बढ़ते बढ़ते ये इंसान बन गया। आज आपने एक जुमला भी बड़ा गलत किस्म का सुना होगा, और अक्सर लोग गलत फहमी में बोल देते हैं कि इंसान एक माशर्ती जानवर है। ह्यूमन इज़ अ एनिमल, सोशल एनिमल, ये इंसान की तौहीन है। अल्लाह ताला इस सबक में हमें बताते हैं कि इंसान बंदरों की औलाद नहीं है, यानी हमारे बाप दादा बंदर नहीं थे। इस सबक से आपको मिलेगा, और ये किस्सा कुरान पाक में 7 दफ़ा आया है, आदम और इब्लीस का किस्सा इसको बोलते हैं। मज़े की बात देखिए, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा, कि जो आज हम पढ़ने लगे हैं आयत 21 से 39, हमारे सामने फर्स्ट टाइम आ रहा है ना, लेकिन तरतीबे नज़ूल, रेवोल्यूशन का ऑर्डर देखे ना, तो ये सबसे आखिरी था। वजह इसकी साफ जाहिर है, कोई बता सकता है कि ये सूरत मदनी है? 8 दफ़ा ये किस्सा, 6 दफ़ा ये किस्सा मक्की सूरतों में आया है। गोया के मदीना आने से पहले पहले 6 दफ़ा ये किस्सा मक्का वालों के सामने दोहरा दिया गया था कि देखो, तुम इस दुनिया में जो भेजे गए हो, एक पीछे मकसद है। वमा खलकना समावाति वल अर्द इल्ला बिल हक। अल्लाह ताला सूरह स्वात में भी कहते हैं कि हमने इस दुनिया को मकसद के साथ पैदा किया। अब सवाल पैदा होता है कि डार्विन ने ये जो थेरी दी थी कि इंसान बंदर से पैदा हुआ है, इसको इतना ज़्यादा, इतनी शोहरत कैसे मिल गई? जहन में आते हैं क्वेश्चंस, बहुत मशहूर है। आपको पता कि लोग आज इसमें पीएचडी करते हैं, थीसिस देते हैं। और दुख की बात समझ ले, ये तो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि बहुत रिलीजियस था, प्रीस था डार्विन, लेकिन जब उसने ये थेरी पेश की तो उसके बाद वो मुनकरे खुदा होके मरा, यानी उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसका वो नुक्ता नज़र बिल्कुल गलत था। आज से कुछ साल पहले अब ये साबित भी हो गया कि ये सिर्फ फौजरी थी। ये सारी बातें आपको मैं 8वें पारे के शुरू में भी इंशाल्लाह सुनाऊंगी, जहां ज़ुख्रुफ़ अल कौल की बात होगी। पिछले साल मैंने वहां जाके बहुत डिटेल से बात की थी। लेकिन उन्होंने ये साबित क्यों करना चाहिए, इस वक्त इस पे गौर कर ले कि क्या फ़र्क क्या पड़ता है इंसान को बंदर की औलाद कह दें। तो यहाँ समझ लीजिए, एक दफ़ा आप मान लें कि इंसान जानवर की औलाद है, तो फिर हम इंसानों से वो सब कुछ एक्सपेक्ट करेंगे जो जानवर करते हैं। मसलन, जानवर कपड़े नहीं पहनते, तो न्यूडिटी को रिवाज दे दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए कि जानवरों में फ्री सेक्स होती है, तो तुम एक दफ़ा मान जाओ बंदरों की औलाद हो, तो तुम्हें फ्री सेक्स की इजाज़त देते हैं। फिर बच्चियाँ ये पूछती हैं, क्या आई एम इज़ टू बैड इफ़ आई एम अ गे और इफ़ आई एम अ लेसबियन, क्या फ़र्क पड़ता है? इट्स माई बॉडी। यानी एक आलिम से एक लड़की, यंग बच्ची, 30 ईयर्स की बच्ची, मुसलमान बच्ची, सवाल करती है कि इफ़ आई डू दीज थिंग्स सो दैट मीन आई एम सो बैड, क्या ये बहुत बुरी बात है कि मैं अपने जिस्म से खेलूँ? इट्स माई बॉडी, ये एक आलिम से पूछ रही है। ये सवाल क्यों हमारी आज नस्लों को दिए? आज आपको यहाँ पता चलेगा कि इस वक्त हमारी जनरेशन किन फितनों में पल रही है, और जिसके पीछे आज हम मरे जाते हैं, और 15, 20, 20, 30, 30 साल तक पढ़ने के बाद भी तसल्लियाँ नहीं होती, फिर भी कहते हैं कुछ और रिफ्रेशिंग कोर्सेज हो जाए ताकि पे स्केल बढ़ जाए। उन्होंने इस डार्विनिज्म थ्योरी के थ्रू हमारी नस्लों को ट्रैप किया। कपड़े वो नहीं पहनते, तुम ना पहनो, ओरल फ्री सेक्स उनमें है, तुम भी रखो। तीसरी चीज़ आप देखिए कि जानवरों की खूबी क्या होती है, कि वो किसी हद तक अपने बच्चों की टेक केयर तो करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप का कोई ख्याल नहीं रखते। आपने देखा है ना कि जानवर कभी कोई अपनी बूढ़ी माँ बिल्ली को नहीं लेके बैठा होगा, छोटी बिल्ली बच्चों को लेके बैठी होती है। वहाँ से आज दुनिया में ये निज़ाम कर दिया कि यस, 18 साल तक अपने बच्चों को पालो, उसके बाद को जाओ। और फिर ये सोच दे दी गई कि भाई देखो, अगर तुम अपने घर से नहीं जाते तो फिर हम तुम्हें निकालेंगे। एक हमारी कोई साथी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक अपनी नेबर से पूछा कि तुम लोगों का हौसला कैसे बढ़ता है, 17-18 साल का बच्चा या बच्ची दोनों को, अब ये खुद सोच रहे हैं कि जाओ भाई अपना ढूंढो घर, जाओ ये वो, तो कहती हमारी अपनी आज़ादी में खलल पड़ता है। अब ये भी यंग, दो टू मच यंग हो गए, अब मैं कुछ करती हूँ तो फिर मुझे ज़रा लगता है कि मेरे बच्चों के सामने मैं रिलैक्स नहीं हूँ। और एक ने तो यहाँ तक हद कर दी कि अगर मेरी 18 साल की बच्ची मेरे घर में रहती तो मुझे नहीं पता कि मेरा शौहर सिर्फ मेरा ही शौहर है या इनका। देखिए जैसे मुसलमानों के अंदर डिफरेंट लेवल है ना, इनमें भी है। कल भी बात हुई थी ना जैसे फासिक में, कि हर काफिर फासिक नहीं होता, कई बड़े लिबरल हैं, कई बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली सेटअप पे हैं, वो अपने बूढ़ों को भी साथ रखते हैं लेकिन आटे में नमक के बराबर। तो आप कह लीजिए कि इस डार्विनिज्म ने इंसानियत को डस लिया। पीछे हमने बात की फासिक होने की, अल्लज़ीना यनकुज़ून से लेके अहद और फसाद की, आज हमें वेस्टर्न लाइफस्टाइल में, यानी इससे कोई मुल्क नहीं मुराद, सोच मुराद है, पूरी दुनिया के ग्लोब के बच्चों को उन्होंने जकड़ा हुआ है। ये जो वेस्टर्नाइज हो गया ना इंसान, इसके पीछे डार्विन का बहुत बड़ा हाथ है। और आप मुझे ये बताएं कितने लोग हैं आज फर्स्ट टाइम ये बातें पहली दफ़ा सुन रहे हैं, वो हाथ खड़ा करें। जी मुझे यही पता था, कसीर है ना। आप बच्चियों ने डार्विनिज्म का नाम सुना, बचपन से ये बच्चे पढ़ते हैं। ये हम भोले भाले माँ बाप जो है ना, हम नहीं पढ़े हुए ना, तो हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जाता है। और इतनी फोर्स्ड इस पे बात है, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स है, आप इसको पढ़ के देखें, जाके करें, हैरान हो जाएंगे कि असल में इसमें पीछे सिर्फ हमारी मुस्लिम, मुस्लिम तो नहीं अब तो सारे ही है, यानी ट्रैप करने के लिए, कि एक दफ़ा इनको इंसानियत के दर्जे से गिरा के नीचे फेंको। अल्लाह ताला कहते हैं आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम जानवरों से नहीं हो, मैंने तुम्हें दुनिया में फ्री सेक्स और इंटरमिंगल होने और सिर्फ अपने नफ्स के तकाजे पैदा करने के लिए नहीं पैदा किया, बल्कि वह इस काल रब कलिल मलाइकतिनी जाइलुम फिल अर्दी खलीफा। और याद करो वो जब के आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि बेशक मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। अब ये कब हुआ आप अपने जहन में एक नक्शा बना लीजिए, मैं थोड़ा सा जहन को पीछे से लेके चलने की आदी हूँ ताकि आप लोगों को बात समझना भी आसान हो। सबसे पहले तो आप विजुलाइज करें, अल्लाह सुबहाना ताला मौजूद है, फरिश्ते मौजूद हैं। ये कब हुआ था, इस कायनात के बनने के बहुत बाद अल्लाह सुबहाना ताला ने ये कायनात बनाई, सब कुछ जो सूरज चांद सितारे फल फूल आपको मुझे इधर दिखता है वो सब कुछ अल्लाह ताला ने लगा दिया था। इसके बाद अल्लाह ताला ने जो बाशऊर किस्म की मखलूकात है ना उसमें जिन्नों को भेजा था दुनिया में, ठीक है। जिन इंसान के ऑपोजिट पे आता है, आपको लफ्ज़ी वज़ाहत में भी बताया गया था, छुपी हुई चीज़ है। अब जिन्नों को अल्लाह ताला ने चॉइस दी, इसके अलावा जितनी मखलूकात है ना, कीड़े मकोड़ों से लेकर फरिश्तों को ले लीजिए, पहाड़ों दरियाओं को, ये सब भी मखलूकात है, लेकिन इनके पास फ्री विल नहीं है। ये आज के सबक से आपको फ्री विल का फ़र्क भी पता चलेगा, ठीक है। इन सब को अल्लाह ताला ने फोर्स्ड ओबीडियंस ही सिखाई। पहाड़ों को कहा खड़े हो जाओ, खड़े, सूरज से कहा घूमो वो घूम रहा है, चांद से कहा घूमो घूम गया, लेट जाओ लेट जाओ, पानी को कहा बहते रहो बहते जाओ, ज़मीन बिछी है, ये सब फोर्स्ड बाय फोर्स्ड सबमिशन कर रहे हैं। जिस मखलूक को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया उसमें सबसे पहली मखलूक जो है वो जिन थे। अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया, ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं थी, रिवायात में अतर ये सारी बातें हमें बनी इसराइली रिवायात से ज़्यादा मिलती हैं कि आसमान की जगह पे काले रंग का धुआं था, फॉगी था। लेकिन जिन्नात एक अलग मखलूक है, जहाँ इसका जिक्र आएगा कसरत से फिर बात करूँगी, वहाँ आपको जिन्नों की कहानियाँ भी सुनाएंगे इसमें इंशाल्लाह। लेकिन यह है कि वो चूँकि स्ट्रांग थे, अल्लाह ने दुनिया को इतना रेनोवेटेड नहीं रखा लेकिन बना दिया। जिन्नों ने दुनिया में आने के बाद खूब उधम मचाया, क्योंकि जहाँ इख्तियार होता है वहाँ उसका मिसयूज़ भी हो जाता है। किसी को आप अथॉरिटी दे के देखिए, सारे रूल्स ही वहाँ से टूटने लग जाएंगे। दूसरे तो 10 दफ़ा मान लेंगे, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि अथॉरिटी का एक बड़ा नशा होता है। अब हुआ क्या कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा और कहा कि जाके जिन्नों को मारो, ख़त्म करो, इन दुनिया को इनसे पाक करो। ज़मीन के अंदर से इस तरह से आप देखिए कि जैसे बीच के जो लिविंग एरियाज होते हैं ना, जैसे इस वक्त आज खुशकी के, फरिश्तों ने जिन्नों को भगाया मारा। जिन कहाँ चले गए, पानियों में चले गए, ओशंस बीचेस। ये जो आज बीचेस इतने न्यूड है ना, उसकी वजह यह है कि वहाँ गंदे जिन रहते हैं। शैतान अपने जो तख्त लगाता है ना, शैतान, वो समंदर पे लगाता है। हदीस में आता है कि हर रोज़ शैतान अपना तख्त पानी के किनारे लगाता है, फिर सारे दिन के अपने वर्कर से रिपोर्ट्स लेता है डेली, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, क्या हुआ, फिर अच्छा तुमने ये किया, कत्ल करवाया, तुमने मारा, ठीक है, वेरी गुड। इतने में एक बंदा आता है ऊपर, कहता है कि आपको पता है मैंने क्या किया, मैंने एक शौहर और बीवी के बीच में लड़ाई करा दी, इतनी हुई कि घर टूट गया। हदीस में आता है कि शैतान अपनी जगह से उठ के स्टेज से नीचे आके उसको गले लगाता है और उसको कहता है असल काम तो तूने किया, क्योंकि उसको पता है कि जिस सोसाइटी में फैमिली सेटअप टूटेगा वहाँ फसाद ही फसाद है। आज आप देख सकते हैं चारों तरफ यही कहानी है। बाद जगह यहाँ तक आता है कि उसको कहा, कहता है कि तू असल में तू मेरा बेटा है, यानी जो प्लान मैं लेके आया था ना उसमें अब रंग तू भर रहा है। अब इन सारे हालात से इंसानियत गुजर चुकी, फरिश्ते खामोश खामोशी से ऑब्जर्व करते थे लेकिन वो ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे। अब अल्लाह ताला का प्लान था कि आदम को भेजे, दूसरी मखलूक साहिब इख्तियार बा इख्तियार है। तो अल्लाह ताला कहते हैं ज़रा उस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था। अब ये कैसे कहा था, क्या कहा था, मुझे और आपको इस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं, हमें तो उस पर गौर करना है जो कि हमें कहा था, ठीक है। क्या कहा था, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। अब लफ्ज़ी वज़ाहत सारी आप पीछे सुन चुके हैं कि मलक, फरिश्ता, पैगाम देने वाला, मलकुल मौत, मलक का नाम उर्दू में भी हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, अलू का पैगाम रसाई को कहते हैं, मलक लाम हमजा अकाफ से है। बाज़ लोग इसके रूट वर्ड में गलती खाते हैं, बाज़ लोग मीम लाम अलिफ मीम लाम काफ लिख देते हैं, बाज़ हमज़ा लाम काफ लिख देते हैं। तो बहरहाल ये तो लफ्ज़ी वज़ाहत इतनी अहम नहीं है। फरिश्तों से कहा कि मैं इस ज़मीन में खलीफा बना रहा हूँ। लफ्ज़ खलीफा से क्या मुराद है, खालामफा इसकी वजाहत में हम देख चुके हैं, एक इंसान का दूसरे की जगह पे खड़ा होना, नस्ल दर नस्ल यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन का मानी है। आप देखिए कि एक तो सूरत ये थी कि जितने इंसान दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजने हैं सारे इकट्ठे भेज देता और सारे इकट्ठे मर जाते, आप सोच सकते हैं दुनिया का हल क्या होता। आज कब से नस्लें आ रही हैं जा रही हैं, पहले आते हैं फिर वो ख़त्म हो रहे होते हैं तो अगले आते हैं, ऐसे नहीं लगता जैसे नए पत्ते आए तो पुराने झड़ गए, पुराने झड़े तो नए, एक सिस्टम चल रहा है ना, दादा फिर पोता फिर परपोता, चलते चलते सिलसिला चल रहा है। इतना ऑर्डरली अल्लाह सुब्हान तआला ने इस कायनात में इंसानों का इंतज़ाम रखा है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये तो मालथियस को अल्लाह ताला उसको क्या कहूँ हिदायत दे, वो तो अब दुनिया में है ही नहीं, उसने ये रिसोर्सेज पेश कर दिए थे कि दुनिया की आबादी इतनी बढ़ रही है और लोग थोड़े, ये जो फैमिली प्लानिंग का इशू है ये उस शख्स ने शुरू किया, वो भी आपके ही यूरोप से ही था। तो बहरहाल किस्सा मुसरी के ये चंद बड़े बड़े नाम है जिन्होंने आज दुनिया के अंदर फिसक फजूर और जो फहाशी और उरियानी फिलवा दी। जब से फैमिली प्लानिंग शुरू हुई वहाँ से जिना और बदकारी आम हो गई, फ्री सेक्स आम हो गई, किसी को फिक्र ही नहीं, जो मर्जी नफ्स की ख्वाहिश पूरी करे उसके बाद अबॉर्ट करवा दे या उससे पहले प्रिकॉशंस ले ले। ये सारे वो बड़े बड़े तागूत हैं जो आज के तागूत हैं। देखिए आप आदम हज़रत नूह का किस्सा पढ़ते हैं, इब्राहिम का पढ़ते हैं जी नमरूद था, मूसा का पढ़ते हैं जी फिरौन था, सुनते हैं ना आगे जाके और सुनते जाएंगे। आज के दौर में अगर कोई नबी होता तो आज के तागूत ये हैं, ये बड़े बड़े नज़रियात, ये बड़ी बड़ी मिथ्स और बड़े बड़ी आइडियोलॉजी। अल्लाह ताला हमें इसका तोड़ बताते हैं कि इंसान को खलीफा कहने की दर वजह क्या है, कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन होगा, एक के बाद दूसरा आएगा। इस लफ्ज़ में बहुत ज़्यादा लोगों ने गौर व फिक्र किया, कुछ ने तो फतवे तक दे दिए कि इंसान अल्लाह का खलीफा कैसे हुआ, खलीफा तो वो होता है जो पहले खलीफा के मरने के बाद आता है, नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के साथ ऐसा। तो देखिए सिंपल सी बात है मेरी और आपकी छोटी सी अकल के लिए, अल्लाह ने कह दिया ना मैं खलीफा बना रहा हूँ तो फिर खलीफा बना दिया। अब वो कैसे बनाया कि इंसान दुनिया में आते जाएंगे अल्लाह ताला के हुक्मों को पे अमल करेंगे। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दे देती हूँ, असल इख्तियारात का मालिक नहीं होता खलीफा, अगर आप इसके लफ्ज़ी वज़ाहत में जाएं, किसी के दिए हुए इख्तियारात को उसके हुक्मों से बजा लाने वाला, आप समझ लें यहाँ पे अल्लाह ताला का ये क्रिएशन प्लान था। अल्लाह ताला इस दुनिया में अपना निज़ाम चलाना चाहते थे, जैसे कोई बादशाह है मिसाल के लिए सिर्फ समझें, वो एक लॉ बनाता है, उस लॉ को इस मुल्क में नाफिज करना है तो किसकी ज़रूरत होगी, इंसानों के ज़रिए होगा ना, कापियाँ किताबें तो नहीं किसी मुल्क की सड़कों पे पड़े चल फिर रहे होते, इंसान चल फिर रहे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हमेशा इंसानों के लिए होते हैं, पेपर्स के लिए पड़े रहे तो फिर तो सारे बड़े ऑर्गेनाइज हैं मुसलमानों में, लेकिन इंसानों की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला चाहते थे कि इस दुनिया में अल्लाह का निज़ाम चले, अब आपके लिए ये टू एडवांस बातें होती हैं, लेकिन कोई कोई मेरे मुंह से निकल जाती है। आगे जाके आपको इंशाल्लाह सूरह तौबा में, सूरह सफ़ में और एक और जगह पे देखेंगे कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लम की आमद का मकसद ही यही रखा है कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलखुदा व दीनिल हक़ के लिए युज़हिरहु अल दीन कुल्लिही। तो आप कह लें कि इंसान को खलीफा क्यों बनाया गया? लियुज़हिरहु अल दीन कुल्लिही। अल्लाह ताला अपने निज़ाम को इंसानों के ज़रिए से इस दुनिया में चलवाना चाहता था। इसके लिए अल्लाह ताला ने पूरे रिसोर्सेज दिए, इंसान के अंदर सारी खूबियाँ डाली, उसको अकल दी, समझ दी, इख्तियार भी दिया। किसी हद तक आपको लोगों को फिर आज़ादी भी देनी पड़ती है। जब आप किसी को किसी सीट पे जो बिठाते हैं, तो आप ये तो नहीं कहेंगे हर बात मुझसे पूछना। तो इसी तरह इंसान को अल्लाह ताला ने ये सब कुछ दे दी और कहा कि ठीक है। अब फरिश्तों ने जब ये बात सुनी तो कालू अतजलु फीहा में युफसिदु फीहा, क्या तू बनाता है इसमें उस शख्स को जो फसाद करेगा इसमें, व यस्फिकुद्दिमा और खून बहाएगा। यहाँ पे रुकिए, फरिश्तों का ये एतराज़ नहीं था, लिख लें। बाज़ लोगों ने इस लफ्ज़ की इतनी रोमांटिक तफसीरें करके फरिश्तों को विलन बना दिया और इंसान को हीरो बना दिया कि देखो देखो फरिश्तों ने इंसान के ऊपर एतराज़ किया कि अल्लाह ताला आप इंसान को क्यों बना रहे हैं। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसुलक, हम तेरी तस्बीह भी करते हैं और तेरी पाकी भी बयान करते हैं। तो लिख लीजिए कि ये फरिश्तों का एतराज़ नहीं है, दे आर नॉट कंप्लेनिंग, बल्कि ये उनका क्वेश्चन है। यहाँ से एक बात पता चलती है कि फरिश्ते बाशऊर मखलूक हैं, अक़ल है। बाज़ लोगों ने आज फरिश्तों को जो मशीनों से जोड़ दिया ना, कि जैसे मशीन को अक़ल नहीं होती फरिश्ते को नहीं होती, तो यहाँ देखिए अतजलु सवाल वही करता है ना जिसमें अक़ल होती है। तो फरिश्तों में शऊर मौजूद है और यस्फिकुद्दिमा, और ये बात क्यों कही फरिश्तों ने, ये सवाल है असल में। इसकी वजह नंबर एक, जिन्नों के हालात पे क्यास किया। याद है पीछे बात सुना दी आपको अभी कि जिन्नों को भी आज़ादी मिली थी तो उन्होंने भी इसका गलत इस्तेमाल किया था, तो इन्होंने भी लिया। दूसरी वजह कहते हैं कि लफ्ज़ खलीफा से समझ गए, क्योंकि अमूमन खलीफा जो होता है ना वो हाकिम और दो के बीच में फैसलों के काम भी कराता है। लफ्ज़ खलीफा से इनको लगा कि अच्छा हो ना हो इंसान जो है वो दुनिया में आके कोई गड़बड़े करेगा, फिर खलीफा की यदि हुक्मरानों की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद फिर उनसे जाके बात करवानी पड़ेगी। खैर ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। फिर इसी तरह आप देखिए कि वो वजह मालूम करना चाहते थे। यहाँ एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता है कि अगर हर बात में ये कह दें ना जी ठीक है ठीक है, तो अगला फिर आपको और नहीं बताता। फरिश्ते हिकमत मालूम करना चाहते थे इंसान की तख्लीक की, तो लिहाजा कह दिया कि इंसान जो आएगा वो खून बहाएगा। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक से एक और बात पता चलती है, इसको हाईलाइट करके लिख लें। फरिश्ते क्या सोच रहे थे? दुनिया बनाने का मकसद सिर्फ अल्लाह की तस्बीह और हम्द बयान करना, बस बैठो अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह करो। फरिश्तों का गुमान क्या था कि दुनिया में आने और भेजे जाने का मकसद यह है कि लोग बैठ के अल्लाह की तस्बीहात करते रहे। हालांकि अल्लाह सुभान तआला क्या फरमा रहे, काल इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यहाँ थोड़ा सा बारीक नुक्ता है गौर करने का कि फरिश्ते कुछ और सोच रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कुछ और बता रहे हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ आपके यहाँ इस कोर्स में आने से। आप जब यहाँ इस कोर्स के लिए आते हैं, क्लासेस में बैठते हैं, कुछ लोगों का इस क्लास में बैठने का गोल या मकसद शायद ये हो सकता है कि हम पूरा लफ्जी तर्जमा याद कर लें। कुछ इस शौक में आते हैं और कुछ इस खौफ में भाग जाते हैं कि हमसे लफ्जी तर्जमा याद नहीं होता, ठीक है। लेकिन कोई एक सिस्टर ऐसी भी इधर आ सकती हैं, एक या चंद एक, जो कहती हैं लफ्जी तर्जमा कोशिश कर लूँगी, हो गया नहीं कुछ नहीं, कोशिश तो पूरी करूँगी, लेकिन मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि जब मैं यहाँ के बैठती हूँ ना तो मेरा दिल गवाही देता है कि ये बातें मुझे समझ आती हैं, मुझे इसकी ज़रूरत है। तो गोया कि इस हॉल में आने वाले सारे लोगों से उन सिस्टर्स का नुक्ता नज़र फ़र्क हो गया, ठीक है। फरिश्तों का नुक्ता नज़र क्या था कि दुनिया बनाने का मकसद क्या है, कि इस दुनिया में हर वक्त सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर की आवाज़ें आए, और ये जन्नत में होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला को पता था कि इस दुनिया को बनाने का मकसद ये नहीं है कि इंसान सिर्फ दीन के रिचुअल्स अदा करे, नमाज रोज़ा हज ज़कात नहीं है। अल्लाह ताला इंसान से तस्खीरे कायनात का काम लेना चाहते थे, मुसख़र करवाना चाहते थे। तस्खीर क्या होती है? टू डिस्कवर दिस यूनिवर्स। सितारों पे कमंदे डालें, नेपच्यून को देखें, चांद पे जाके कदम रखें, अल्लाह की इस कायनात के ऊपर जगह जगह पे इस बात की मोहरें लगाएं कि ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये काम अल्लाह ने इंसानों से कराना था। इस एक लफ्ज़ से दुनिया के अंदर रिसर्च वर्क और दुनिया के इल्म की भी हैसियत हमें पता चलती है। अल्लाह सुबहाना ताला ने ये सब कुछ बता के कि इंसान सिर्फ मस्जिद में बैठकर नमाज रोज़ा नहीं करेगा, हकीकत में इंसान क्या करेगा? बहुत और सारे काम करेगा। एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है, आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुनी होगी इल्म की रिवायतों में, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि जब फरिश्ते अल्लाह ताला के पास इसके बंदों के अमाल लेकर जाते हैं तो अल्लाह ताला इनसे पूछता है, हालांकि वो खूब जानता है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। फरिश्ते जवाब देते हैं कि हम जब इनके पास से आए हैं तो इस वक्त भी वो नमाज़ पढ़ रहे थे, और जब इनके पास गए तो भी वो नमाज़ पढ़ रहे थे। ये कब होता है? फजर और असर, ड्यूटी चेंज होती है। तो गए थे तो फजर की नमाज़ पढ़ रहे थे, आए हैं तो असर की पढ़ रहे थे। ये इसलिए कि फरिश्ते हमारे पास नमाज़ असर और फजर में आते हैं, कुछ फरिश्ते आते हैं और दूसरे अमाल लेकर चले जाते हैं। तो फरिश्तों का इस तरह से आना और जाना ये है क्या है? अल्लाह ताला के हुक्म पे। अब वो देखते हैं बंदों के पास के वो बंदे नमाज़ पढ़ रहे हैं, बस फरिश्तों को इतना ही पता है। अल्लाह सुबहाना ताला कहते हैं कि इन्नी आलमु माला तालमून, कि मुझे पता है कि इंसान जो काम करेगा वो तुम नहीं कर सकते। ये मुराद है इधर, यानी सवाल पैदा होता है ना कि अल्लाह को क्या मालूम था जो फरिश्तों को नहीं मालूम। तो पहली तो इसकी तफसीर कह लें कि अल्लाह ने बताई नहीं है, लेकिन समझ में क्या आ रही है बात? कि अल्लाह को पता था कि अगर गुनाहगार है, यस्फिकु दिमा हो रहा है, अगर इंसान वाकई खून रेजियाँ करेगा, चोरियाँ चिकारियाँ करेगा, तो रातों को तहज्जुदों में भी तो इंसान ही खड़ा होगा, जान भी तो अल्लाह के रास्ते में इंसान ही काटेगा। आप देखिए कि अल्लाह, कभी आपने सुना फलां जगह इतने फरिश्ते शहीद हो गए, फरिश्तों को गुस्ल दिया गया, फरिश्तों के ज़रिए से ये काम कराया गया? बस एक इस्तआरतन जंगों में आते हैं, असल ऑनर किसकी है? इंसान की है। तो अल्लाह ताला यहाँ अपनी बात को बयान करते हुए फरमा देते हैं कि मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। ये एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ता है जो हम सबको सोचने पे माइल करता है कि हमें अपना पर्पस ऑफ लाइफ मालूम होना चाहिए। व्हाट इज़ माई पर्पस ऑफ लाइफ? अब अगर आप कहते हैं दीन के नाम पे नमाज रोज़ा हज ज़कात ही काफ़ी है, तो ये पर्पस ऑफ लाइफ नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुछ और इससे बढ़ के कह दिया। फिर दूसरी बात इसमें नोट कीजिए कि फरिश्तों ने ये जो कहा कि हम आपकी तस्बीह करते हैं, तो इसमें एक तो तस्बीह वो है जो आज भी फरिश्ते करते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र में आसमानों पे ले जाए गए तो ऊपर फरिश्तों की तस्बीहात की आवाज़ें थी। ज़मीन का कोई कोना ऐसा खाली नहीं है जहाँ फरिश्ते ना हो। आसमानों पर फरिश्तों की वजह से चिचराहट की आवाज़ें पैदा होती हैं। हमारे बैतुल्ला के ऊपर एक और बैतुल मामूर है जिसके अंदर फरिश्ते तवाफ़ करते रहते हैं, 70,000 फरिश्ते करते हैं, और आज तक दूसरी बार बारी नहीं आई जिसने एक दफ़ा किया। ये तो एक तस्बीह है, लेकिन एक तस्बीह की और फॉर्म भी है जो हमें अपने अंदर लानी है, और वो क्या है कि अल्लाह ताला जब उनको किसी काम का हुक्म देते हैं तो उसको करने के लिए तेज़ी से दौड़ते हैं। इसको अमली तस्बीह कहते हैं। तस्बीह क्या है? सब्बाह युसब्बिह, टू फ्लोट के मानी होता है तैरना। ये जो तस्बीह पे मोती पड़ते हैं ना लोग, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए ऐसे कश्ती तख्त नीचे जाते हैं ना मोती, तो उसमें भी एक किस्म का ऐसे पूरा फ्लो चल रहा होता है। तो अमली तस्बीह से मुराद है कि फरिश्ते कभी भी अल्लाह ताला के हुक्म को पीछे नहीं डालते। और नुकद्दिसु में होलीनेस का मानी आता है, तकदीस का मानी आता है। खैर, हमारे लिए इतनी बात काफ़ी। अब यहाँ पे एक स्लॉट पूरा हुआ। पूरे लेसन को अगर आप ऐसे सोचें ना कि आप बैठे हैं और एक स्टेज ड्रामा हो रहा है, ड्रामा नहीं कहना चाहिए इस्तेलाह में, यानी एक डिस्प्ले हो रहा है स्टेज पे। पहले एक स्लॉट था, फरिश्तों को कह दिया गया कि इंसान आने वाला है, दैट्स इट, और तुम रहना। फरिश्ते आगे से कुछ नहीं बोले, ठीक है अल्लाह ताला ने जो कह दिया हम उस पर यकीन रखते हैं। अब सेकेंड स्लॉट है, अब यहाँ से बी डाल लें अपनी तफसीर में, इंशाल्लाह आप गलती नहीं खाएंगे। وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, और सिखा दिए उसने आदम अलैहिस्सलाम को नाम सारे। किसने सिखा दिए? आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। किसके नाम सिखा दिए? कुल्लहा, सारी चीज़ें। ये कौन सी चीज़ें थी? जिन चीज़ों की इंसान को दुनिया में ज़रूरत पड़नी थी। कुर्सी है, मेज़ है, खाने की चीज़ें, डिशे, डोंगे, कोई भी है, यानी फरिश्ते खाने पीने सोने जागने की सलाहियतों से आज़ाद है। उनको उन लाइवलीहुड की ज़रूरत ही नहीं होती जो इंसान को होती है। अल्लाह ताला ने क्या किया कि आदम को इल्म दिया। यहाँ पहले नोट करें, पहली दौलत दुनिया में भेजने के बाद जो इंसान को दी गई वो क्या थी? इल्म था। और कौन सा इल्म था? अब यहाँ आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा जो शुरू में उठाया था, एक्वायर्ड नॉलेज और इल्मुल वही, यानी वही का इल्म और दुनियावी इल्म। ये कौन सा इल्म अल्लाह ने आदम को दिया? दुनियावी इल्म दिया, साइंस का इल्म दिया। ये सूरज है, ये चांद है, ये सितारे हैं, ये ज़मीन होगी, ये पहाड़ है, वर्ल्डली नॉलेज दिया, ठीक है। सुम्मा रदहुम अलल मलाइका, फिर उनको फरिश्तों के सामने पेश किया। फ़काल अम्बिउनी बी अस्माई हा उला इन कुंतुम सादिकीन, फरमाया कि मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। किन चीज़ों के? जो आदम को पता थे, फरिश्तों को नहीं पता थे। किस बात में सच्चे हो? अपने इस दावे में, क्या तजल फी हा मैं युफ्सिकुद्दीमा। अल्लाह ताला फरिश्तों को कैप्ट, यहाँ लिख लें ये फरिश्तों का इम्तिहान है। तीन इम्तिहानात का तذکرہ इस सबक में हम पढ़ेंगे। ये पहला इम्तिहान है, फरिश्तों का इम्तिहान है। आदम अलैहिस्सलाम को पेश किया, और आदम का लफ्ज़ गंदमी रंग की वजह से, आदमी, ये जो लफ्ज़ आदमी है ना, ये भी आदम से निस्बत है। आदम गंदमी रंग का वीटिश किस्म का शख्स है, और कहा कि इनके नाम है, टर्मिनोलॉजीज कुछ सिखा दी जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह की होती हैं, और अल अस्माकुल्लाह बताए, सारे के सारे नाम बता दिए। देखिए, आदम अलैहिस्सलाम से हम सब ने आना था। दुनिया में क़यामत तक जितने वर्ल्डली नॉलेजेस भी आ रहे हैं ना, आपको पता है ना कि दिन ब दिन दुनिया के उलूम भी तो बढ़ते जा रहे हैं ना। पहले दौर में क्या सब्जेक्ट्स थे? इंग्लिश, उर्दू, हिसाब, ऐसे ही थे ना, चार छः, मैथमेटिक्स। आहिस्ता आहिस्ता केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी हो गई। अब आज के दौर में क्या क्या मिल रहे हैं? कंप्यूटर साइंसेज आ गई, MBA आ गया, कोई टेक्नोलॉजी आ गई कि न्यूरो सर्जन बन गया। वक्त के साथ डिफरेंट नॉलेजेस आ रहे हैं ना। अल्लाह सुबहाना ताला ने डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्डली नॉलेज का जो मेन सोर्स था ना, वो आदम के ब्रेन में डाल दिया। ये पूरी बात समझ लें, आगे समझ आ जाएगी आपको। जैसे आप कंप्यूटर लेते हैं, जैसे ये मेरे पास लैपटॉप है, जब ये नया बिल्कुल था, खाली था, कुछ नहीं था इसमें, फिर मैंने क्या करवाया इसमें? हर चीज़ डलवाई। आपने लफ्ज़ सुना हो ना, इंस्टॉल करना। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाल दिया, फिर इसमें ऑफिस डाल दिया, फिर इसमें PDF खोलने का डाल दिया, इसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम डाल दिया। अब क्या होता है, वो सब डला हुआ है अंदर कंप्यूटर्स में। जो ही आप कोई फाइल खोलते हैं, वो उसके सिस्टम में से लेती है और खुल जाती है। ये सबको मेरे वाले बात आसानी से समझ आती है, ठीक है। कभी आप कोई फाइल प्ले करें, खोलें, वो ना खोलें, तो आप कहते हैं नहीं, मेरे कंप्यूटर में पैलटॉप डाउनलोडेड नहीं है, राइट? तो फिर हम उसको लेते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को सारे नाम दे के अल्लाह ताला ने आदम के ज़रिए ह्यूमंस के जीन्स में हर नॉलेज को हासिल करने की कैपेबिलिटी डाल दी। ये मुराद है, ठीक है। आज आप कैसे कह सकते हैं कि दुनिया का इल्म मुसलमान नहीं हासिल करें? इम्पॉसिबल है, बेवकूफ़ है वो मुसलमान जो ये कहे कि दुनिया का इल्म बेकार है। असल वजह क्या है? हम सिर्फ दुनिया के इल्म में खो गए। ये ज़रा टॉपिक पूरा हो जाए तो मैं इस पे बात करना चाहूँगी थोड़ी सी, जहाँ दूसरा टॉपिक साथ आएगा, कि आदम को सारे नाम दे दिए, फिर फरिश्तों के आगे पेश किया। फ़कालम बेउनी बी अस्माई हाउलाइन कुंतुम सादिकीन, फरमाया कि अब इनके नाम तुम बताओ अगर तुम सच्चे हो। किस में सच्चे हो? अपने इस दावे में सच्चे हो कि आदम को ना बनाओ। कालू, फरिश्ते बोले, सुबहान का, पाक है तो। यहाँ हाईलाइट करें, नीचे लिखें इसके। अभी फरिश्तों ने जो बात कही थी ना कि नाहनु नुसब्बिहु बिहम्दी का, ये उसका अमली सबूत है। फरिश्ते ये भी तो कह सकते थे ना, कालू ला इल्मा लना, सुबहाना का की जरूरत नहीं थी। साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? लफ्ज़ सुबहाना का से पता चल रहा है कि वाकई फरिश्ते अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं। उन्होंने कहा पाक है तू, यानी अल्लाह ताला जो भी बातें हम सोचते हैं वो सारी चीज़ें तू, यानी अगर हमारे जहन में तेरे बारे में कोई गलत बात आती है तो तू उससे पाक है। ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा बाअदब जुमला कोई नहीं हो सकता। हमारे पास तो बस वही इल्म है जो आपने हमें दिया। एक तरीका क्या होता, फरिश्ते कहते बताया कब है आपने हमें, ये तो आपने हमें पढ़ाया ही नहीं। कुछ लोग होते ना भोंडे तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं। देखिए, अदब के बगैर इल्म बेकार है। मतलब इमाम मालिक के पास कोई शागिर्द थे, या इनकी बात आ रही है मेरे जहन में, कि वो कहते हैं कि मैं अपने उस्ताद से एक दफ़ा इल्म सीखा और शायद 30 बार मैं दोबारा उनकी महफिल में जो गया वो मैं उनसे अदब सीखने गया, और अदब आते ही उस्तादों के साथ बैठ के हैं। बेअदब बेनसीब, बाअदब बेनसीब। फरिश्तों ने अल्लाह ताला को, क्योंकि बाकी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को वो नाम तो नहीं दिए हुए ना, अपनी लैंग्वेज में हम देखें कि अल्लाह ताला ने एक चीज़ फरिश्तों को नहीं बताई। आप एक उस्ताद की बात लें, मिसाल है कि उस्ताद ने यहाँ पे ऐसी अपनी मिसाल ले लेते हम लोग कि सूरत रोम नहीं पढ़ी अभी हमने, और कल मैं आऊँ और मैं आपसे कहूँ कि चलिए यहाँ से शुरू करके सूरत रोम का तर्जमा सुनाना शुरू कर दें, अंदर से हम सब में से क्या बात निकलेगी? कुछ तो चीख के बोल पड़ेंगे ना, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमने पढ़ाया ही नहीं, ये तो आपने बताया ही नहीं है, ये एक स्टाइल है ना। तो एक बंदा कहेगा क्या वाकई यहाँ से पढ़ूँ? अच्छा, अब उससे भी खूबसूरत अंदाज देखिए, ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना, अल्लाह जी हमें तो बस वही पता है जो आपने पढ़ाया। फ़र्क, बात वही है। देखिए, एक डॉग बादशाह था, उसने ख्वाब देखा। अब वो ख्वाब के वो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि वाकई उसकी ताबीर वही होती है जो बाद में आगे सामने आती है। जब उसने ख्वाब देखा तो वो परेशान हो गया, उसने जाके अपने लोगों में से कहा कि मुझे ख्वाब की ताबीर बताओ। एक शख्स जो ख्वाबों की ताबीर का माहिर था, उसने कहा कि बादशाह सलामत, आपके सारे रिश्तेदार मर जाएंगे। बादशाह को बड़ा रंज हुआ, इतना दुख हुआ कि मेरे सारे रिश्तेदार मर जाएंगे। खैर, दुख भी हुए उसको, नाराज़ हुए उस पर, लेकिन दिल में कुलक था। किसी एक और समझदार से आने को बुलाया और उससे कहा कि भाई तुम भी मुझे बताओ मेरे ख्वाब की ताबीर। तो वो भी बंदा जो था आ गया। इरम चेक करें आवाज़ ठीक है, नहीं तो पेल्टो कब आ रहा है, मैं उसमें ले सकती हूँ, पूछ के बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या कि बाद दूसरे शख्स ने क्या कहा, अब सुनिएगा, ये फ़र्क आपको बताने लगी हूँ, बात करने का तरीका, समझने का, बात करने का मामला कैसा होता है। उसने कहा कि बादशाह सलामत, माशाल्लाह बड़ा अच्छा ख्वाब है। कहा क्या? कहा आपको अल्लाह इतनी लंबी ज़िंदगी देगा, इतनी लंबी ज़िंदगी देगा कि आपके सब रिश्तेदारों से ज़्यादा लंबी ज़िंदगी देगा। तो बादशाह ने उसको मुबारक दी, नाफे तोहफे दे दिए। फ़र्क दोनों में था कुछ? सेम बात थी। तो याद रखिए, वो कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां बदल देता है। वो कहते हैं कोई चीज़ दुनिया ने नई नहीं है, इस जहाँ में नया कुछ नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले कैसे करते हैं। पुराने खाने को नए बर्तनों में डाल के पेश कर दें, बहुत अच्छा खाना पेश होगा। तो फरिश्तों का ये अंदाज़, इससे मैंने और आपने बात करने का अदब सीखना है। ठीक है, अगर मुतमईन है तो सही है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखिए, ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना, आपको फ़र्क, वैसे बात बाय द वे मिसाल तो समझ आई है, ये बात समझ आ गई है। हमेशा बोलने से पहले तोले, हमारे बड़े कहते थे पहले तोलो फिर बोलो, पहले सोचो फिर बोलो। अक्लमंद की ज़ुबान उसकी अक्ल के पीछे होती है और बेवकूफ़ की ज़ुबान अक्ल से पहले होती है। तो ये मेहनत ही तो सीखने बैठे हैं हम फरिश्तों की इन बातों से, ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना, यू आर द ओनली वन टीचर आई गॉट द इल्म नॉलेज, कि जो आपने सिखाया है वही है। खैर, इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अब इस पे भी, इससे भी खूबसूरत जुमला कि आप बहुत जानने वाले हैं और खूब हिकमत वाले हैं। भला यहाँ इस जुमले से क्या पता चल रहा है कि कहीं ये जुमला कि आपने जो सिखाया वो ही है, इससे ये गुस्ताखी ना हो जाए कि अल्लाह ताला आपके पास कोई इल्म ही नहीं जो आप हमें देते। हाँ, आप अल अलीम है, अल्लाह ताला हमें पता है सारा इल्म आपके पास है। हाँ, अगर आपने हमें कोई बात नहीं बताई तो आप अल हकीम भी तो है, क्योंकि उस्ताद को पता होता है कब कितना देना है। आप देखिए कि दवाइयाँ तो सारी डिस्पेंसरीज पे मिलती हैं, और अक्सर हमारे पाकिस्तानी कल्चर में तो सबको ही पता है बुखार पे क्या देते हैं, खांसी पे क्या देते हैं, वो डिस्पेंसरियाँ तो हमारे घर में चलती फिरती मौ की सूरत में है, लेकिन क्यों डॉक्टर पे जाते हैं? वो ये बताता है कौन सी दवा कब कितनी देनी है, बस यही काम उस्ताद का होता है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बता दिया, फरिश्तों ने इतने खूबसूरत अंदाज से कहा कि अल्लाह ताला आपको पूरा इल्म है, दूसरों को नहीं। कोई कह सकता है हमें तो आपने इतनी डिटेल से नहीं पढ़ाया। अच्छा, हमें तो बड़ी डिटेल से पढ़ाया था, अब काम है अंत अलीमुल हकीम। जैसे डॉक्टर को पता होता है ना कि किस मरीज पे कितनी दवा है, तो इससे एक अमल की बात भी नोट करें कि एक उस्ताद को पता होना चाहिए कि किस माहौल में कहाँ क्या बात करनी है। डिफरेंस और डिफरेंट ऑडियंस जब होते हैं ना, तो उस्तादों का स्टाइल बिल्कुल बदल जाता है, और बदलना चाहिए। एक ही बात आप 10 साल में बार बार रिपीट करते जाएंगे तो बात के अंदर तनाव नहीं होगा। तो बहरहाल फरिश्तों ने गिव अप कर दिया, क्या मैं नहीं पता। अच्छा, अब आप ज़रा इस जुमले पे बाद में जाके गौर कीजिएगा, इसके और कितने मुतवक्के जवाब हो सकते थे, ये आपने लिख के लाने हैं, समझे। फरिश्तों के इस जुमले की बजाय और क्या जुमले हो सकते थे जो वो इससे ज़्यादा बदलते। तो आप लिखे और फिर इंशाल्लाह इसमें हम अपनी इसलाह करेंगे। खैर, ये मामला हो गया। काला, अल्लाह सुबहान तआला ने फरमाया। अच्छा, आप यहाँ एक लफ्ज़ नोट करें, लफ्ज़ काला है, काला, कौल कुल, कौल कुल ना कौल। जहाँ मैं लफ्ज़ बोल रही हूँ ना फरमाया, तो आप फ़ौरन समझ जाएँ कि ये अल्लाह सुबहान तआला के लिए आ रहा है। फरिश्ते और इंसान कहें तो कहा, तो ये आपके लिए एक तफसीर के अंदर डूबने की एक हिकमत समझ आ रही है कि बाज़ दफ़ा ये नहीं पता चलता कि ये काला किसके लिए आया है, तो अल्लाह ताला ने बता दिया। काला अलम सॉरी काला या आदम अम्बे हम भी असमाहिम। अल्लाह ताला ने अब आदम अलैहिस्सलाम को मौका दिया कि आदम जी आप आइए और आप इनको इन चीज़ों के नाम बता दीजिए। फलम अम्बा हम भी असमाहिम, आदम को कोई मुश्किल ही नहीं हुई, सारे नाम बता दिए। काल अलम अकुल्लकुम इन्नी आलमु गैब समावाती वाला, अल्लाह सुबहान तआला ने फरमाया क्या मैंने तुमको ना कहा था कि मैं जानता हूँ आसमानों ज़मीन के गैब, छुपी हुई बातें भी जानता हूँ। बात वाज़े। अब देखिए, वालमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, और मैं वो भी जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और मैं वो भी जानता हूँ जो तुम छुपाते हो। अच्छा, अब आप अपने ऊपर लें, उस्ताद ने आपसे एक ऐसा सवाल पूछा जो बताया ही नहीं हुआ था, अब आप उस पर तो सब्र करके पी गए, समझ गए इतनी बात, कुछ नहीं हुआ। उस्ताद कहते अच्छा आप नहीं बताएं जी, आप बताएं, इधर से पूछ लिया, उसने ठीक बता दिया, तो उस्ताद अब उसकी तारीफ़ करें, तो हम क्या करते हैं, हमारा अंदर से दिमाग इतना खोलने लगता है, एक तो मुझे बताया कोई नहीं, ऊपर से मुझसे सबके बीच में पूछ लिया, उस पे अब उनकी तारीफ कर दी। ये फितने होते हैं। फरिश्तों को अल्लाह ताला कह रहे देखा, मैंने नहीं तुम्हें कहा था कि मैं वो जानता जो तुम नहीं जानता। याद रखिए कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से हमेशा ऊपर होता है, चाहे उस्ताद का हो या माँ बाप का हो। यहाँ से हमें रिस्पेक्ट समझ आ रही है, माँ बाप आपको कुछ दे रहे हैं कि नहीं, उनको कंप्यूटर चलाना आता कि नहीं, आप ज़्यादा टेक्नोलॉजिस्ट बन गए हैं उनको नहीं आता, लेकिन वो आपके माँ बाप है। एक बच्चा था ना, मेरी उससे बात हो रही थी, तो वो ज़रा जैसे जवानी का नशा होता है ना कि इनको पता नहीं है मुझे ज़्यादा पता है, इनको काम नहीं करना आता मुझे आता है। तो मैंने उसे कहा कि बेटा मेरी बात गौर से सुनो, तुम अपने अब्बू से 25 साल छोटे हो और तुम अपनी अम्मी से 18 साल छोटे हो, क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी माँ 18 साल की थी, तुम इनसे बड़े नहीं हो सकते। ये अंदाज़ देखिए कि फरिश्तों ने चले उस पे तो इनकार नहीं किया, लेकिन इस पे भी कुछ नहीं बोले कि अल्लाह ने नहीं कहा। तो यहाँ फरिश्तों का इम्तिहान पूरा हुआ, क्या नतीजा निकला, 100/100। हालांकि जवाब नहीं आया उनको, क्या पता चला, हमेशा 10/10 लेने वाले नहीं जीतते, बात को एक्सेप्ट करने वाले जीतते हैं। यहाँ ये हमारे लिए अमल की बात है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहि फरिश्तों का इम्तिहान लिया, उन्होंने जोर ही नहीं लगाया, ठीक है दैट्स इट, जो भी होता है कर लेते हैं, आपको सब कुछ पता है, आप जो करें आप जो चाहें कर लिया, ठीक है। अल्लाह सुबहाना ताला ने ये सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पे इतने हिस्से में थोड़ी सी हम बात करके आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब दूसरा स्लॉट हमारा पूरा होता है, आदम और फरिश्तों का चक्कर जो था वो पूरा हुआ। पहली बात कि पहली नेमत मिली इल्म की, इल्म बुरा नहीं होता। याद रखिए, अगर आप अपने कुरान पढ़ाने वाले उस्तादों की इज्जत करते हैं ना, तो उर्दू सिखाने वालों की भी करें, इंग्लिश सिखाने वालों की भी करें। अगर मुझे किसी ने उर्दू ना सिखाई होती तो क्या आज मैं ये टूटी फूटी उर्दू ही सही बोलती, नहीं बोल सकती थी ना। बीच में कई जगह विरासत पढ़ाते हुए मैथमेटिक्स बताती हूँ मैं, मेरे अगर टीचर्स ने मुझे मैथ ना सिखाया होता तो क्यों मैं पढ़ती। तो आज के जो तालीमी सेटअप है ना, उसमें एक बहुत ही गड़बड़ है, टीचर्स के साथ भी रिस्पेक्ट नहीं करते। आप लोग बताएं बच्चों, ये फर्स्ट लाइन बताएगी कि आप अपने स्कूल में जब होते हैं, रेगुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी जिसको प्यार से यूनी कहते हैं, ये भी आज के दौर का एक फैशन है यूनी, यू नहीं है, तू कोई नहीं है, यू मैंने, तुम नहीं मैंने, नहीं तू कौन है। लेकिन नाम है ना, फिर हम भी वही बोलते हैं। अब बच्चे वो आ जाए, कल इसको कुछ और भी यू कर देंगे, बोझे लगते हैं ना लफ्ज़। आप लोग जब स्कूल में होते हैं, अपने कॉलेजिंग पूरी लाइफ, और यहाँ आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह ये सेकंड वीक चल रहा है ना, आपको इस स्कूल के माहौल और अपने स्कूल और कॉलेज के माहौल में क्या फ़र्क लगता है? जी इधर से आप रवि, प्लीज़ गो हेड, जल्दी से, लेकिन नहीं तो खाना लेट मिलेगा। मोर फोकस्ड है इधर, ठीक है जी। नेक्स्ट आयशे, आप अनीसा, आप आयशे, आप इधर नहीं, कोशिश किया करें, मैं आपके साथ बाद में बात करती हूँ जी। आप फोकस रहा करें क्लास में, ठीक है जी। स्कूल में लोग टीचर को रिस्पेक्ट नहीं करते, और क्या करते हैं भला जी? आप फर्स्ट, नेक्स्ट। जी यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में 2-1 घंटे के बाद थक जाते हैं, ब्रेक मिल चाहिए होती है, और यहाँ एनर्जी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप अस्मा, अस्मा ना, एरम, एरम जी। यहाँ हम अपने दिल की खुशी से लर्न करते हैं, वहाँ बस मजबूरी होती है जी। आयशा जल्दी से जी। आपने भी खुद को यंग समझने के लिए हाथ खड़ा कर लिया जी। जी ये भी है कि वहाँ बन ठन के जाते हैं, अभी आप इसको सादगी कहते हैं, सादगी तो अभी इनको सिखानी है आगे जाके। अच्छा जो वहाँ हालात है उससे ये सादे हैं माशाल्लाह जी। जी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि आम स्कूलों में उस्ताद को इक्वल समझते हैं, इट्स ट्रू। और जी आप आयशा, आप दोनों बहने हैं, ओके कजन हैं जी। यहाँ रिस्पेक्ट देते हैं, वहाँ नहीं देते जी। हाजरा, वहाँ सुकून नहीं है, पीस नहीं। और एक चीज़ जो आप नहीं बोले, किसी ने, मैं सुनना चाह रही थी कि नाम लेते हैं टीचर्स का, अमेरिका में लोग नाम लेते हैं, इक्वल लेते हैं, समझते हैं। और बात यकीन करें, जोक्स है, टीचर जब पीछे बोर्ड पे लिखने के लिए कुछ करती है ना, तो स्टूडेंट्स जैसे ये पाँव ऊपर करके ना अपने उसके ऊपर दिखाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से इस तरह के ऑब्जर्वेशन लिए, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा दीन कौन सा दीन है जी। आप प्लीज, जी जी सही जी। आप प्लीज, देखिए मैं एक रिपोर्ट, किसी ने मतलब अनबिलीवेबल एनाटॉमी पढ़ा रही थी एक टीचर, एनाटॉमी समझते हैं क्या होता है, ये हड्डियों की, और वो अपने आप को आलमोस्ट नेकेड लेके आई क्लास में टीचर। उसने कहा कि इतना खुश्क मजमून जो है ना, वो बंदा इस तरह के माहौल के बगैर नहीं पढ़ सकता, और अपनी हड्डियाँ दिखा के उसने पढ़ाया। आप क्या सोचते हैं? मैं कहती हूँ कि मैं अल्लाह का लाख शुक्र करती हूँ, अल्लाह ने मुझे इस आजमाइश से बचाया हुआ अभी तक। मैं तो सोचती हूँ माँ बाप को नींद कैसे आती है, ये तो हमारे हीरे हैं ये बच्चे, वल्ला ही हमने जोहड़ों में फेंके हुए, हमें नहीं पता इनके ऊपर क्या कुछ हो रहा है। तो हमेशा फिक्र करें अपनी अपनी नस्लों की। मेरी अपनी नंद उसामा साहब की जो बहन है, अमेरिकन रेस्ड है, सारी ज़िंदगी इन चारों बहन भाइयों की परवरिश सारी अमेरिका में हुई है, वो सारी ज़िंदगी वहाँ रही, पढ़ी, फिर वो एक वक्त में टीचर रही, शादी से पहले वो टीचर थी, उसने कई साल पढ़ाया। अब इस वक्त उसकी एक अमेरिकन कन्वर्ट मुस्लिम से शादी हुई भी है, इतने खूबसूरत उसके बच्चे हैं ना कि मतलब वही बात है कि गोरों के बच्चे गोरे ही होंगे, लेकिन आज तक मुझे नहीं याद उसको कि उसने अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज भेजा। जब मेरी शादी तो उसके बच्चे छोटे छोटे थे, तो मैं एक ही जुमला सुनती थी, मैं हैरान होती थी कि सिस्टर सामिया कहती कि मैं अपने बच्चों को यहाँ के स्कूलों में नहीं भेजूंगी, उसने घर में होम स्कूल बना लिया पूरा घर का नीचे का, और कहती मेरे से और भी कोई आ जाए अपने बच्चों को लाए ताकि मेरे बच्चों को मोर लाइक स्कूल फीलिंग आए। तो अभी माशाल्लाह यंग हो रहे होंगे कुछ, 10-8 साल तो ऊपर हो गए होंगे, लेकिन यह कि वो मेरे आखिरी मुलाकात तक तो उसने नहीं भेजा। कहती कि मुझे, मैं एम टीचर, मुझे पता है कि हम बच्चों को क्या दिखाते हैं और कराते हैं। अभी नॉर्वे की बात है, हमारी एक स्टूडेंट है तो वो आजकल एक जगह टीचर असिस्टेंट के तौर पे जाती हैं क्लास में, आम रेगुलर में, तो कहती है उस्ताज़ा मत पूछे। यानी इतने हालात तंग है कि यहाँ से आप कुरान सीख रहे हैं और इस पे आप जितनी मर्जी दुनिया के इल्म की बात करें, इल्म और अदब साथ। हमारे असलाफ सहाबे कराम, उनके बाद ताबईन, तबा ताबईन, आइमे कराम, उमवी दौर, अब्बासी दौर, उसके बाद हमारा बनी ये जो हमारा समझे कि बरेसगीर पाक को इनका दौर, इल्म की बड़ी इज्जत थी। आपको इंशाल्लाह इसी कोर्स के एंड पे अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो आपको मुस्लिम हीरोज़ पढ़ाऊंगी, फिर आप देखेंगे हम किन की नस्ल है, बंदरों की नहीं है। साइंटिस्ट मुस्लिम्स, अलजेब्रा का लफ्ज़ अरबी है, आप पढ़ के हिस्ट्री की देख लें, आप देखिए बड़े बड़े नाम हैं, अगर आप में से किसी के जहन में इस वक्त कोई नाम है तो बोल सकते हैं, अल बैरूनी मुस्लिम, इब्ने सीना मुस्लिम। अब आप कहेंगे है क्या, आते ये कपड़े सीते थे, हमें तो इतना भी नहीं पता। इब्ने खुलदून देख लीजिए, फिर आप देखिए कि एक मेरे नाम दिमाग में से घूम रहा है, वो इंग्लिश और उर्दू का फ़र्क होता है, इमाम जोजी, तो खैर वैसे इल्मी शख्सियत थे ना। सारा आज जितना वेस्ट को ये टेक्नोलॉजी और साइंस और केमिस्ट्री, पहला ऑपरेशन मुस्लिम ने किया, वो दौर था जब हम दुनिया का भी इल्म सीखते थे, साथ बाअदब थे। कटता कहाँ है कि जब सिर्फ दुनिया का इल्म इकरा बिस्मी रब्बी कल्लसी खलक की बजाय इकरा रह जाता है। इस वक्त क्या इल्म का गुलगुला है, सिर्फ इकरा पढ़ो 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 पढ़ो, 15 साल 20 साल, बिस्मी रब्बी का कट गया आज हमारे इल्म से, दो हिस्से बन गए हमारा इल्म, वो टूटा। एक तरफ वो स्कूल सिस्टम अमेरिकनाइज्ड, बीकन हाउस और बड़े बड़े अच्छे नाम, और दूसरी तरफ मदरसा सिस्टम, टाट सिस्टम, फटे हुए कुर्सियों वाला। ये जब जुड़े हुए थे ना तो हम इस पूरी दुनिया पे थे। आज भी देखिए कि इस वक्त आप कहते हैं ना कि मुसलमान क्यों डिप्रेस है, वजह क्या कि टेक्नोलॉजी तो सारी नॉन मुस्लिम ले गए, वेपन सारे उन्होंने बना लिए, साइंसी रिसर्च उन्होंने की, जहाज़ उन्होंने बना लिए, आपको उनसे ख़रीदने पड़ते हैं ना। अब हम काम खुद कर लेंगे, हम खुद बनाएंगे, हमें इनकी बड़ी शर्तें माननी पड़ेंगी। आज के दौर में इस बात को समझ लें कि जब तक पढ़े लिखे लोग कुरान की तरफ नहीं आएंगे, मुसलमानों की हालत नहीं बदलेगी। ये हम जैसे लोगों ने तो बस अपनी आखिरत ही बना के कोई तड़प तड़प के दुनिया से चले जाना है, सिर्फ तड़पना है। याद रखिए आने वाले दौर के अंदर वो आइडियल वक्त आने वाला है कि साइंटिस्ट है अपनी लैब में बैठा है और है ये अलसला है ये अलफला, टाइम टू गो। एक डॉक्टर है ऑपरेशन थिएटर में अपने काम कर रहा है और नमाज का वक्त है तो आ गया, ये कॉम्बिनेशन देना इस वक्त। और अगर आप सारे बच्चे चले जाएं फिर दुनिया की तरफ, आपको जॉब्स करनी है, आपको पढ़ना है, आपको और कमाना है, तो फिर रोती रहे उम्मत, रो रही है और भी रो लेंगे कुछ और साल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चेंजेस आ रही हैं। आप तौफीक चौधरी का इंटरव्यू सुनिएगा, मैंने खुद पर्सनली वहाँ बैठ के उस महफिल में उनका सुना, डॉक्टरी के आखिरी साल में थे, कहते हैं कि बस जब शौक लगा अरबी का तो बस मेरा दिमाग ही इस पे था कि मैंने नहीं, मुझे अरबी सीखनी है, मेरा मुझे बहुत सीखना है। 1 साल 2 साल 3 साल करते रहे कराते रहे, आखिर एक दिन कहते मैंने दिल में सोचा कि नहीं, मेडिकल तो और बड़े लोग पढ़ लेंगे, मुझे कुछ और पढ़ना है। कहते मैंने अपने माँ बाप के सर पे बम फोड़ा एक किस्म का कि आई एम लीविंग द मेडिसिन, और मैं फिर सऊदी अरब गया और वहाँ उन्होंने पढ़ा। ये जो लोग आज दीन का काम कर रहे हैं ना, ये हमारी तरह सोसो के नहीं आए, काम किया इन्होंने। तो दुनिया का इल्म लाजिम है, शर्त क्या है कि उनकी अपब्रिंगिंग और उनके साथ दीन का रंग होगा। फिर अगली चीज़ इस हिस्से से आप नोट कीजिएगा कि आदम अलैहिस्सलाम जो हैं उनको जो नॉलेज दिए हैं वक्त के साथ अब एक्सपोज हो रहे हैं। जैसे कली होती है ना, उसके अंदर फूल बनने की पूरी सलाहियत होती है, वक्त के साथ साथ हर दिन वो खुलती जाती है। ये आज जितने नॉलेज एक्सपोज हो रहे हैं ना, इनका सोर्स पीछे आदम अलैहिस्सलाम ही थे। मटीरियल साइंस सिखाई जा रही है उनको, जो कल उनके जीन्स में थे आज मेरे और आपके जीन्स में भी वो सारी सलाहियतें मौजूद हैं। कुछ चीज़ें नोट कीजिए, आदम अलैहिस्सलाम से इंसान ने विरसे में क्या लिया, बल्कि मैं भूलूँ ना तो मुझे एंड ऑफ द लेसन बताइए। आज अभी सिर्फ वो लिख लें जो इतने हिस्से से मुतल्लिक है। आदम अलैहिस्सलाम से हमने इल्म हासिल करने की सलाहियत ली, अल्लाह ताला ने हर बंदे को ये सलाहियत दे के वो इल्म सीखे, और दूसरों को इल्म सिखाने की सलाहियत भी अल्लाह ताला ने इंसान को दी है। उसके बाद क्या हुआ, आगे चलते हैं और जो बाकी सलाहियतें हैं वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे। इतनी बात के बाद अब चूँकि आदम अलैहिस्सलाम की बात ठीक थी, फरिश्तों का काम ना हो सका, अल्लाह ताला का दूसरा हुक्म फरिश्तों को, वइस कुलना लिल मलाइका तिस्जुदू ली आदम, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इबलीस, सब ने सजदा कर लिया, कोई कॉम्प्लेक्स था ही नहीं बीच में, नो का मादा ही नहीं था। कहा ठीक है, हम होते कहते लो जी पहले आपने उनको सिखा दिया, फिर उन्होंने नाम बता दिया, बाप आगे से हमें और रुसवा करें, शर्मिंदा करें कि आप इसके आगे झुक जाओ। नहीं, ये जो बात है ना, फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, आदम को फरिश्तों ने कर लिया, इल्ला इबलीस, इबलीस ने ना किया। इबलीस को भी पीछे करके सिर्फ इतने हिस्से को समझ लें, ये कौन सा सजदा था? अल्लाह के हुक्म को सजदा था। लिखिए, आज लोगों ने इस बात को दलील बनाकर कब्रों की तरफ सजदे करने, पीरों को सजदे करने, बुजुर्गों को कब्र सजदे करने शुरू कर दिए। तो यहाँ समझिएगा, असल इबादत की जो तारीफ है ना, वो आपको समझ आ रही है। इबादत क्या है? अल्लाह के हुक्म को मानना। ये अल्लाह के हुक्म को सजदा था। ये ऐसे ही है जैसे आज हमें हुक्म दिया कि हम खाना काबा की तरफ सजदा करें। क्या आप काबा को सजदा करते? फलयाबुदु रब्बा हज़ल बैत, हज़ल बैत। तो अल्लाह के घर को सजदा करते हैं, अल्लाह को, सॉरी।
ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
ठीक है, अस्मिल्ला। तो यहाँ आप देखिए कि अल्लाह जिस चीज़ को सजदा करने का हुक्म दे उसको मान लेना है। खुद से कोई किसी जगह किसी को सजदा करेगा तो वो शिर्क है। अल्लाह कह दे करो और ना करेंगे तो ये नाफरमानी होगी। अगली चीज़ इससे दूसरी बात समझ लें कि क्रिएशन प्लान का ये हिस्सा था सजदा। कैसे? अल्लाह ताला ने ये जो दुनिया बनाई है ना, इसमें इंसान की हैसियत जो है ना, ये रूलर की है, हुक्मरान, बादशाह। हर बादशाह के आगे कुछ कारिंदे होते हैं ना, वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ या फौज के सिपाही। इस दुनिया में इंसान से जितने काम लिए जा रहे हैं ना, वो फरिश्तों के ज़रिए से हो रहे हैं। तो ना सिर्फ ये लिटरल सजदा था, बल्कि ये बाय मीनिंग ऑफ सजदा था। सजदे का मानी होता है झुकना, सबमिसिव होने के मानों में। यहाँ फरिश्तों को ये बता दिया कि अब इंसान या आदम का अपर हैंड होगा और तुमने इसको मानना है। और सूरत रात में आप पढ़ेंगे कि हर इंसान के साथ फरिश्ते हैं। रिवायत में आता है कि हर इंसान के साथ 10 फरिश्ते लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये फरिश्तों का एक किस्म का सजदा करना इस बात का इजहार था कि वी विल ओबे यू। इल्ला इबलीस, मगर इनकार। फरिश्ते पास हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए कि जो अल्लाह ने कहा कामयाब हो के ख़त्म हो गया। इबलीस कौन था? आप पढ़ेंगे सूरत बनी इसराइल में आता है, वकाना मिनल जिन, जिन्नों में से था। अपनी असल के अतबार से ही वजह जिन, लेकिन सजदे और इबादत कसरत करने की वजह से फरिश्तों में उठता बैठता था। असल नहीं छुपती बंदे की। बाज़ लोग नमाज़ें पढ़ पढ़ के मशहूर हो चुके होते हैं, दिल के खोटे होते हैं, दिल के अंदर बेईमान होते हैं, किसी ना किसी मौके पे उनकी बेईमानी खुल जाएगी। इबलीस कौन था? लिख लें, इबलीस वो था जिसने अल्लाह के हुक्म के मुकाबले पर अक्ल इस्तेमाल की, लॉजिक्स, रीजनिंग, वाई आई विल डू दिस, इफ आई विल नॉट डू दिस देन व्हाट विल हैपन, क्यों करूं, कैसे करूं, क्यों, क्या होगा, ना करूं तो क्या होगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग की। अकलमंद था। देखिए, हर अकल अकलमंदी की नहीं होती। इबलीस से ज़्यादा अकलमंद कौन होगा? उसने अकल इस्तेमाल की। अबा वस्तकबरा, वजह क्या थी? तकब्बुर, किबर, प्राउडनेस, खुद को बड़ा समझना। इससे पता चलता है कि जिस बंदे के अंदर तकब्बुर होता है ना, वो अल्लाह के हुक्म को सुनकर रीजनिंग में पड़ जाता है। इसके सारे रवैये आप तफसील से पढ़ेंगे सूरत अल अराफ में, ट्रिक्स ऑफ शैतान और शैतान के सारे काम करने के तरीके वहाँ आपको पता चलेंगे, लेकिन यहाँ फोकस चूंकि इबलीस पे नहीं है इसलिए बात ज़्यादा नहीं करेंगे। वकान अमिनल काफरीन, इनकार करने वालों में हो गया। ये किसका इम्तिहान हुआ? ये सेकंड एग्जाम था इबलीस का। रिजल्ट क्या है? फेलियर। वजह क्या है? बेवकूफ़ था, अक्लमंद था, ज़्यादा अक्लमंद था। तो वो कहते हैं ना कि जी ओवर कॉन्फिडेंट था, अपनी बात को ज़्यादा अहमियत देता था अल्लाह की बात से। ठीक है, तो काफिर यहाँ देखिए अल्लाह को मानता था इबलीस, मानता था। आप पढ़ेंगे आगे फंजिर नीला योम युबासुद, अल्लाह को भी मानता था, क़यामत को भी मानता था, लेकिन अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता था। तो यहाँ आपको काफिर की एक और तारीफ मिल गई, वो लिख लीजिए। काफिर वो भी है जो अल्लाह की बात को ना माने, जो मुतकब्बिर है, जो दिल में बड़ा बैठा है, वो भी तकब्बुर है। अल्लाह को माना लेकिन अल्लाह की बात नहीं मानी। ये सजदा इल्म की बुनियाद की वजह से नहीं करवाया अल्लाह ने, बल्कि आदम के बीच में अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी थी, इस वजह से ये सजदा हुआ। खैर, ख़त्म हो गई बात, आगे चले। ये मामला भी पूरा हुआ। तीसरा स्लॉट है कहानी का, एक साथ पढ़ूंगी जहाँ तक चलता है। वकुलना या आदम उसकुन अंत वज़ौजुकल जन्ना, और हमने कहा है आदम आप और आपकी बीवी जन्नत में रहिए। वकुला मिन्हा रगदन हैसु शीतुमा, और आप दोनों खाएं जहाँ से चाहें जितना ज़्यादा। हाँ बस, वला तकरबा हाज़िहि शजरता, इस दरख्त के करीब ना जाइएगा, वरना क्या होगा? फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों में से हो जाएंगे। कहानी को समझें, जन्नत खोल दी गई, कौन सी थी हमें नहीं पता। कुछ कहते हैं असल जन्नत थी, कुछ कहते हैं कोई एक टेम्परेरी जन्नत थी। वो दोनों बातों छोड़ के ये समझ लें कि आसमान पे थी। ये हमें रवायतों से मिल जाता है। ये वो जन्नत जो आज की है उसमें कोई पाबंदी नहीं होगी, ये आपको आगे जाके इंशाल्लाह समझाएंगे। अभी बस सिंपल रखें कहानी को, क्योंकि पहली दफ़ा आप सुन रहे हैं। आदम से कहा उस्कुन वानता अंता वज़ौजुक, यहाँ एक बड़ा ही लतीफ़ सा नुक्ता है जो अभी आपके लिए तो टू अर्ली है, लेकिन इशारा मिल रहा है तो जिक्र कर ही देती हूँ। जब रहने की बात है तो आदम से कहा कि आप भी रहे, वाहिद यानी सिंगुलर में यूज़ किया, और अपनी बीवी को भी ले जाए। इससे पता चलता है कि बीवी को कहाँ रखना है, बीवी का घर बार नान नफका, ये मर्द की जिम्मेदारी होती है। लेकिन वह कुला मिनहा रगदन में तसनिया ड्यूल है, तुम दोनों खाओ। यहाँ आदम से नहीं ये कहा या हव्वा से ये नहीं कहा अच्छा तुम भी खा लिया करो। मुफस्सरीन कहते हैं कि बीवी का रहना सहना मर्द की जिम्मेदारी है, और बीवी खा सकती है मर्द से पूछे बगैर, वरना हर वक्त फ़ोन ही चलता रहे मैं एक से एप्पल ले लूँ। और अब तो हाल इससे अपोजिट है, मर्द बेचारे पूछते हैं बेगम मैं ले लूँ, मेहमानों के लिए तो नहीं है, है? ये आपने किसी और अपनी जगह तो नहीं लेके जाना ना, है? तो खुला खा सकते हैं, और हमारी औरतें तो मछला खुल के खाती हैं। रगदन क्या होता है? बग़ैर मेहनत और मशक्क़त के कोई खाना पीना। रगद वो नेमत जो ख़त्म ना हो, अल्लाह ने मौका दिया था खाओ पियो मोटे नहीं हो गए, मोटे होने का डर ना हो तो वल्ला ही फिर तो मर्दों का और ही हाल हो दे खराब। हाँ, जो छोड़ती हैं बीवियाँ खाने से रुकती हैं, वो मियाँ के डर से नहीं छोड़ती, मोटे होने के डर से छोड़ती हैं। हैं, बहरहाल खा लो पी लो, इस दरख्त के करीब ना जाना। ये कौन सा दरख्त था हमें नहीं पता, बस शजरे ममनुआ इसका नाम रख लें, प्रोहिबिटेड ट्री, बस कोई था, एक आजमाइश थी बस। अल्लाह ताला देखना चाहते थे कि आदम और हव्वा इस मामले में क्या करते। अच्छा, वहाँ एक दरख्त था, आज भी है कोई दुनिया में प्रोहिबिटेड चीज़ें? थोड़ी सी हैं, सूरत मायदा में पढ़ेंगे सिर्फ। खैर, वरना क्या होगा? फतकून अमिन ज़ालिमीन, ज़ालिमों में हो जाओगे। आदम ने कहा ठीक है, हमने क्या करना उस रख को देख के, हमारे पास इतनी जन्नत है। लेकिन वो ज़ालिम शैतान इबलीस, जिसको ये बात समझ आ गई थी कि आदम को अब जन्नत मिल गई है और मैं जन्नत से निकाला गया हूँ, हसद के बारे में उसने बहकाने की कोशिश की। फ़ज़ल्लहुम अश्शैतान अन्हा, बस बहका दिया इन दोनों को शैतान ने उसमें से। या नोट कीजिए, किसने किसको बहकाया? इबलीस ने दोनों को बहकाया। आज क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी में? ये किसी का फोन आ रहा है और इससे सारा गड़बड़ हो जाएगी। ईव क्या है? ईवल से नौजुबिल्ला। क्रिश्चियनिटी में नज़रिया यह है कि हव्वा को, हव्वा ने आदम को बहकाया था, इसीलिए तो आप देखिए कि जो लफ्ज़ आप बड़े प्यार से ख़ुद को कहते हैं ना, आई एम अ वूमेन, ये वूमेन क्या है? वॉस है, मर्द को हलाक करने वाली, वूमेन जी वही है। तो ईव ईवल से लेके ईव हजरत हवा को कहते हैं, और बास तो ये कहता है कि ये दर्दे ज़ै यानी डिलीवरी पेन्स या पीरियड्स के पेन है वो भी उसकी सजा है, ये सब झूठ है। आदम को हवा को दोनों को इब्लीस ने बहकाया था, उस जन्नत से निकलवा दिया जिसमें थे, अल्लाह की रजा से निकल गए। वकुल नह भी तू बा दुकुम ली बा दे न दो, हमने कहा कि तुम में से बास बास के दुश्मन हैं। कौन किसके? शैतान इंसान का, इंसान शैतान का, मर्द औरत की, औरत मर्द की, यानी डिफरेंट फॉर्म्स हैं दुश्मनी की। वलकुम फिल अर्दी मुस्तकर्रुम व मताउन इला हीन, तुम्हारे लिए ज़मीन में एक ख़ास वक्त तक रहना है और ठिकाना है एक मुद्दत तक। यानी आदम और हव्वा को जन्नत से निकाल दिया गया और कह दिया गया कि आप दोनों अब इस जन्नत से निकल जाएं और इस दुनिया में थोड़ी देर बस आप रहेंगे। अब तो आदम को समझ आ गई ये क्या हुआ, ओहो कोई गड़बड़ हो गई। फतलक्का आदम मिन रब्बी ही कलिमातिन, पस सीख ली आदम ने अपने रब से कुछ कलेमात। वो कौन से कलेमात थे? सूरत अल अराफ की आयत नंबर 37 में आप पढ़ेंगे, काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हम दोनों ने अपने नफ्सों पे जुल्म किया और अगर तू हमें माफ़ नहीं करेगा, हम पे रहम नहीं करेगा, तो हम खसारा पाएंगे। कब तक कहा, कितना कहा? जब तक अल्लाह का हुक्म था, दोनों को ज़मीन पे भेज दिया, यहाँ ये दुआ करते रहे। फताब अलैहि, फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, क्योंकि इन्नहु हुव तव्वाब रहीम, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है, यानी माफ़ कर दिया। आदम और हव्वा आसमान की जन्नत में थे, बहकाया शैतान ने नीचे आ गए। यहाँ एक बात नोट कर लीजिएगा, ये ख़ास तौर पर यंग ग्रुप तो ज़रूर नोट करें, दुनिया का इल्म मौजूद था आदम के पास, इसके बावजूद शैतान के फंदे से नहीं बच सके। लेकिन आगे जाके आप पढ़ेंगे कि वही यानी कुरान का इल्म आया तो फिर शैतान का वार उन पर नहीं चल सका। ये है प्रॉब्लम आज का, हम अपनी नस्लों को दुनियावी तालीम दे रहे हैं इसके बावजूद वो शैतान से नहीं बच रहे। जब तक उसके अंदर वही की तालीम नहीं आएगी नहीं होगी। और जन्नत में रख के अजली दुश्मन की पहचान भी करवा दी, आखिरी मुकाम भी दिखा दिया, ताकि इंसान में ख्वाहिश पैदा हो कि मैंने बिलाखिर इस जन्नत में आना है। अब देखिए आदम अलैहिस्सलाम को तौबा के अल्फाज सिखाए। सवाल एक पैदा होता है, गलती तो इबलीस से भी हुई थी ना, उसको क्यों नहीं ये अल्फाज सिखाए तौबा के? कोई आप में से इसका जवाब देगा? जी आप पीछे से। जी शाबाश, गलती इबलीस से भी हुई थी लेकिन वो अपनी गलती पे शर्मिंदा नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम को तौबा इसलिए सिखाई कि शर्मिंदगी थी, तो तौबा की पहली शर्त जो होती है ना वो शर्मिंदगी है, इसलिए अल्लाह ताला ने सिखाई। शैतान तो खुद फख्र कर रहा है, इन्नी प्राउड ऑफ, आप पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह उसमें आगे जाके कि वो अपने आप को बहुत फख्र फील करता था। लफ्ज़ तलक्की आया इधर, लिकाल लकू, शौक और रगबत के साथ किसी चीज़ को अच्छा समझते हुए कबूल कर लेना। या नोट तो कीजिए, पहली दुआ क्या सिखाई जा रही है? तौबा की। क्यों भला? इसलिए कि दुनिया में आने के बाद सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत पड़नी थी इंसान को। हम सबको भी ये तौबा की दुआएं ज़ुबानी याद होनी चाहिए। एक और बात नोट कीजिए, जन्नत तक की हर चीज़ बिन मांगे दे दी लेकिन मग़फ़रत के लिए दुआ मांगना सिखाया। इससे क्या पता चलता है? कि मग़फ़रत मांगनी पड़ती है, बख्शिश मांगनी पड़ती है। दुनिया आपको मुझे ऐसे भी मिल जाएगी लेकिन आखिरत मांगनी पड़ेगी। खैर अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया, हो गया ख़त्म मामला। कुल नह भी तुम इन हजमियन, सब निकल जाओ इसमें से। अब आदम के जहन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई अल्लाह ताला जी आपने मुझे माफ़ तो कर दिया है ना, कर दिया है, तो वापस जन्नत दे दें। जैसे आप बच्चे से नाराज़ होकर ना उसका खिलौना छीन के अलमारी में रखती हैं और साथ ही आप कहती हैं मेरे से बात भी ना करना, फिर बच्चा रोता है धोता है थोड़ा तड़पा तड़पा, तो आप कहते हैं अच्छा जाओ जाओ मैं अब तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तो अगला सवाल क्या करता है? अम्मी अब खिलौना भी दे दे। तो आदम ने भी कहा होगा कि अल्लाह ताला अगर आप अब नाराज़ नहीं है तो फिर जन्नत दे दे। कहा नहीं अब नहीं, फ़ाइम मयाती यन्नकु मिन्नी हुदन, अब जब मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आएगी, फमन तबिया हुदाया, नोट करें लफ्ज़ तबिया को, बस जो कोई पैरवी करेगा हिदायत की, यानी किताब घर में रखने से नहीं, तबिया हम कुरान खरीद के रख लेते हैं, हम कहते हैं बहुत सारे कुरान रहमत आ जाएगी, इसकी तबाह करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहसनून, ना उसको कोई खौफ होगा और ना वो गमजदा होगा। किस चीज़ का खौफ? मुस्तकबिल का, फ्यूचर सिक्योर्ड हो जाता है इस किताब से जुड़ने पे। मौत का भी खौफ चला जाएगा इंशाल्लाह, कब्र का भी खौफ चला जाएगा, काम करते जाए अपना। और गम किसका? माजी का दिन, हाँ इतने साल लेट क्यों आए, हाँ इतने दिन क्यों छोड़ दिया, ये क्यों कर दिया, का जब आ गए हो 100 दफ़ा आ जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये सब कुछ आसान कर दिया है, तुम अपने आप को इस चीज़ में बांध के रखो। और अगर फिर नहीं, वल्लज़ीन कफरू व कज़्ज़बू बी आयातिना, वो लोग जो हमारी आयतों का इनकार और तकजीब करें, उलाइका असहाबुन्नार, वो आग के साथी हैं, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। क्या पता चला कि एक इंसान को यहाँ लाके खड़ा कर दिया कि तुम्हारी निजात कब होगी? जब तुम किताबे हिदायत को लोगे। यहाँ हाईलाइट कर लीजिए लफ्ज़ मिन्नी हुदन। हुदन क्या है? चल रहे सफ़र आपका सूरत फातिहा से हुदन का, ये है हुदन लिलनास, ये है हुदन लिलमुत्तकीन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, किसको मिलेगी दुआ, उसकी कबूल होगी? फमन तबिया हुदाया या फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहसनून। तो गोया के इसमें हमें ये बता दिया कि दुनिया के इल्म के साथ साथ वही का इल्म, किताब का इल्म जो है ये लाजमी है, इसके साथ ही एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियाँ भी आती हैं। आज अगर मैं और आप अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें, जो भी ज़िंदगी आज तक हमने गुजारी, आप देखिए दुनिया का इल्म तो हमने बहुत लिया ना, हर एक ने लिया थोड़ा बहुत, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, लेकिन खुशी मिली, इत्मीनान मिला। आज वही के इल्म से कटे हुए घरों को जाके देखिए, शौहर बीवी के खिलाफ, बीवी शौहर के खिलाफ, शक, इस्तराब, वहम, इधर से उधर, माँ बाप बच्चे की नहीं मानते। आप कह लें कि आज इंसानियत सिसक रही है, जबकि उन्होंने दुनिया के इल्म को दीन के इल्म से काट दिया, पूरे सबक के अंदर से, जो हमारे लिए आज तक के लिए काफ़ी काम बात है, वो क्या है कि हमने अपनी नस्लों के सिर्फ दुनिया के इल्म की फ़िक्र नहीं करनी, दीन की भी करनी है। और अपने आप को भी हम सब इस पे लेके देख लें कि अगर हमने दीन का इल्म लेना है तो इट्स नॉट टू लेट। आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में हमारे जीन्स के अंदर ये चीज़ मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सीख सकते हैं। कोई ये ना सोचे कि मैं नहीं सीख सकता, ठीक है केमिस्ट्री आपको नहीं आ सकती इस उम्र में, लेकिन कुरान आ सकता है, ये अल्लाह ताला का एक मोजज़ा है। मैं और आप नहीं पढ़ते, अल्लाह पढ़ाता है, मैं नहीं बोलती, अल्लाह बुलवाता है। अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ये बात ली है कि इन्ना अलैना जमा व कुराना थुम्म इन्ना अलैना बयाना, सूरह क़यामत की आयतें 29वें पारे की आखिर में। तो कभी ये ना सोचिए कि आई एम टू ओल्ड, मुझे दुनिया का नहीं आता, मैं पढ़ी लिखी नहीं, मैं बहुत हूँ। और दूसरी तरफ यंग्स को, बच्चों को शैतान क्या कहता है, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी ज़रा पढ़ पढ़ा लो बड़े हो गए। तो उस वक्त ये फिर सोचें कि जो सफ़र जल्दी शुरू होता है ना वो स्मूथ होता है, घर से ही लेट निकलेंगे तो फिर तो हाँफ जाएंगे, आखिर में एक्सीडेंट हो जाते हैं बाज़ दफ़ा कि हमें एयरपोर्ट पर पहुँचना है वरना फ़्लाइट निकल जाएगी। तो अल्लाह ताला हम सब की इसलाह फरमाए। ये तो इस सबक का एक किस्म जे कह लीजिए कि पूरा खुलासा था, 6 दफ़ा ये किस्सा आगे आना है, इंशाल्लाह आप इसमें से इतना कुछ देखेंगे। मज़े की बात है कि हर जगह जहाँ ये किस्सा आएगा बिल्कुल डिफरेंट एंगल से आएगा। आज का एंगल क्या था? एल की इम्पोर्टेंस। दो लोग शेयर करें, बाकी सब लिखें, अपनी फीलिंग्स लिखिए स्लाइड्स पे, ऑनलाइन पे खोल दीजिए टेक्स्ट भी, इंशाल्लाह ताला हम इस पे चंद टेक्स्ट लेकर ब्रेक लेंगे। और आज भी ब्रेक के, चूंकि हमारा वक्त 15 मिनट ऊपर गया है तो नमाज का वक्त हम ब्रेक में ले लिया एग्जैक्टली, इंशाल्लाह जब लब्बैक हो तो आप प्लीज़ लब्बैक के दौरान इधर मौजूद हों ताकि हमारी दरसो तदरीस की बुक ना रह जाए, ठीक है? शेयर कीजिए इधर से कोई, जी आज बल्कि इधर से शेयर करें, आपका नाम मैं भूल जाती हूँ, नाम क्या आपका? जी नादिया, आप शेयर करें प्लीज़ क्विकली, बाकी सब लिखें अपनी और अपनी स्लिप्स जो हैं वो टेबल पर छोड़ दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, यानी अपनी गलतियों के ऊपर माफ़ी मांगनी है, तौबा करनी है इस्लाह के लिए। और कोई इधर से इस लेन में से? जी आयशा, आप शेयर कीजिए। جی شاباش، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا اور اس کو اپنے توبہ کی کوشش کرنی ہے. بالکل جی، ادھر سے کوئی شیئر کرے. پیار اور محبت کے ساتھ بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. تو ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آپ لوگ شیئرنگ اپنی چھوڑ دیں، ادھر بریک لیجئے اور بریک کے لیے فوراً اٹھ جائے کریں. آپ لوگ یہاں بیٹھے رہیں گے نا اگر اگلا بھی گھنٹہ، تو آپ جب واپسی پہ اٹھیں گے نا تو آپ کے پاؤں سوجے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس وقت میں سب پڑھنا لکھنا آپ چھوڑ دیں. ہمارے برین کو بھی ریلیکسیشن چاہیے ہوتا ہے، اور ہم اپنے وہاں ہاسٹلوں میں تو مین کلاس روم کے اندر آنے ہی نہیں دیتے بریک کے اندر، بالکل اس کو خالی کر کے لائٹیں بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انجوائے کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ایگزیکٹلی ایسے چلائیے. آپ حاجرہ میں خود ہی آتی ہوں لینے، میں خود ہی لیتی ہوں آ کے نا. میں نہیں اس طرح نہیں کرے نا، مجھے اچھا نہیں لگے گا. آج کتنے کا پھر میں اس کے پیسے دیتی ہوں، میں پیسے دیتی ہوں اس کے. اور آپ لوگ نا حجرہ کچھ بھول، ابھی اس کو نا اس طرح سمجھ نہیں، اس کا مائنڈ ادھر نہیں پورا آتا نا. ابھی بریک ہے تو اس کو چاہیے کچھ لگا دیں. اور آپ جاتے ہوئے سب سے ساتھی لیتی کہ آپ اپنی جگہ سوٹے، کیونکہ میں بار بار کہہ رہی ہوں یہ بات ہے کہ یہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں تو یہ اچھے سائن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ارم بات سنیں.